नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरिवंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। जवाब में इसराइल ने आज ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इसके बाद से ईरान के कई शहरों में जोरदार विस्फोटों की खबरें हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के इस्फहान में 3 विस्फोट हुए हैं।
8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
इराक के शिया मिलिशिया कटाएब हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों में शामिल होता है तो वे इराक और क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ये चेतावनी समूह ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर जनरल सेंटोंस शहर से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर आया। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूटान में बीती रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। इससे किसी भी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग आज उत्तर कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये 7 वर्षों में पहली उत्तर कोरिया की यात्रा होगी। इस यात्रा से चीन का उत्तर कोरिया पर प्रभाव बढ़ेगा और चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग अपने 2 दिन की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। विदेशी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक का द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोनों देश अमेरिका के साथ अलग अलग टकरावों के मद्देनजर अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का आर्थिक व मुख्य राजनयिक समर्थक रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
आर्मेनिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना जारी है। आर्मेनिया के चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान लगभग 2000 मतदान केंद्रों पर हुआ, जहां 24 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी लगभग 57% वोटों के साथ आगे चल रही है। रूस समर्थक स्ट्रांग आर्मेनिया गठबंधन लगभग 21% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर और पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोर्चियान के नेतृत्व वाला आर्मेनिया गठबंधन लगभग 8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये चुनाव वर्ष 2023 में अजरबैजान से आर्मेनिया की सैन्य हार के बाद पहला चुनाव है। नेपाल में कलिंग साहित्य महोत्सव का 4th संस्करण कल काठमांडू में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय सीमाओं से परे बदलते विश्व में दक्षिण एशियाई साहित्य है। इस महोत्सव में नेपाल सहित पूरे दक्षिण एशिया के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने उपन्यास कारा के बारे में बताया। उन्होंने साहित्य को समाज, मानवीय अनुभवों और भावनाओं का प्रतिबिंब बताया। कार्यक्रम में अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा, गायिका इला अरुण, लेखिका प्रतिभा रॉय, लेखक और फिल्म निर्माता राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत और अन्य कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियों ने शिरकत की। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय पहलवानों ने मंगोली में चल रहे उलान बतोर ओपन 2026 टूर्नामेंट में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना सफल अभियान समाप्त किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।